ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம் ஹரி ராம் 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 ஹரி ஹரி. சப்கோ சாதர் வந்தன். ஆஜ் மாத்ருதின் ஹை, மதர்ஸ் டே, லேக்கின் யே அங்கிரேஜி ஹிசாப் சே ஹை. பாரதீய சன்ஸ்கிருதி கே அனுசார் யே ஜோ மாத்ருதின் ஹை வோ ஸ்ராவண் அமாவாஸ்யா கோ ஆதா ஹை. ஔர் ஸ்ராவண் அமாவாஸ்யா கோ மகாராஷ்டிரா மே பிட்டோரி அமாவாஸ்யா கேதே ஹை, ஔர் தக்ஷின் பாரத் மே உசே பிலோலா அமாவாஸ்யா பி கேதே ஹை. யே ஜோ அமாவாஸ்யா ஹை ஜோ இஸ் சால் 18 ஔர் 19 அகஸ்த் கோ ஆனே வாலி ஹை. குச்ச லோக் உஸ்கோ 18 அகஸ்த் கோ மனாயேங்கே, குச்ச லோக் 19 அகஸ்த் கோ மனாயேங்கே. வோ தோ எக் டெக்னிக்கல் பாத் ஹை, லேக்கின் இஸ்கி சோட்டி சி கதா ஐசி ஹை கி பார்வதி தேவி நே இந்திர கி பத்னி கோ இஸ் அமாவாஸ்யா கே விரத கே பாரே மே பதாயா தா. ஔர் இஸ் விரத கி விசேஷதா யே ஹை கி இஸ் விரத கோ ஏக் மா கர்தி ஹை அப்னே புத்திரோ கே லியே, ஔர் ஏக் மா அப்னே புத்திர கோ அச்சா ஸ்வாஸ்த்ய ப்ராப்த ஹோ இஸ்லியே யே விரத கர்தி ஹை. தோ சோட்டி சி கதா ஐசி ஹை கி ஏக் மா ஏக் பார் உஸ்கா புத்திர போத் பிமார் ஹோ கயா ஔர் மரணாசன்ன ஹோ கயா. तो वो भगवान के उसके पास धन भी नहीं था, वैद्य के पास जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी और बिल्कुल असहाय थी. तो वो जाकर मंदिर में बैठकर रोने लगी. तो वहाँ में बहुत देर रोने के पश्चात एक वृद्धा वहाँ पर आई और उसने उसका कारण पूछा. तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मरणासन्न है, मर भी सकता है. तो उस समय उसने उस माता को जिसका बेटा बीमार था उसे पिठोरी व्रत के बारे में बताया. उसमें 64 देवियों की गेहूं के आटे का जो हम बनाते हैं रोटी के लिए, मलते हैं उसको पानी डाल के, तो उस गेहूं का आटों का पिष्टी 64 देवियों की मूर्ति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं. उसको बहुत बड़ा लंबा विधि है, वहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे. लेकिन उस विधि को करने से, क्योंकि अगले ही दिन उसके भाग्य से पिठोरी अमावस्या थी, तो उसने वो विधि को अपनाया और किया और तुरंत उसका बालक मरणासन्न अवस्था से ठीक हो गया और अपने सुंदर आरोग्य को प्राप्त किया. इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, क्योंकि इसे माता पार्वती ने इंद्र की पत्नी को बताया था तो ये शास्त्रोक्त है, इसलिए पिठोरी अमावस्या के दिन को भारतीय संस्कृति के अनुसार मातृदिन मानते हैं. कोई बात नहीं, पूरा विश्व अभी अंग्रेजी लोगों को उनका अनुकरण करता है, तो हमें माताओं का दो बार गौरव करना भी बहुत पसंद है. तो इसलिए आज भी हम मदर्स डे के विषय में चर्चा करेंगे. मराठी में कहा है, स्वामी तिनी जगाचा आई बिना भिकारी. हमारे रामदास स्वामी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र के संत हैं, वो कहते हैं कि अगर हम तीनों लोगों का साम्राज्य भी प्राप्त करेंगे, उनका स्वामी भी बनेंगे, फिर भी अगर हमें माँ नहीं है तो हम भिखारी की तरह हैं. ये वाक्य उनका बहुत ही समर्पक है, क्योंकि माता का हमारे जीवन में क्या स्थान है, चाहे बचपन हो या मध्यम आयु हो या बुजुर्ग अवस्था हो, माता का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये इस वाक्य से रामदास स्वामी जी हमको बताते हैं. अभी हमारे जीवन में जब हम मनुष्य का जन्म लेते हैं तो माता 7 प्रकार की होती है, ये हमारा शास्त्र कहता है. एक है हमारी माता जो जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, एक है गौ माता, उसके बारे में तो इस वक्त को बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गौ माता इतनी महत्वपूर्ण है, वो तो सबकी माता है, सबको दूध पिलाती है, उसके अंदर सारे देवता सारे लोक समाये हुए हैं. तीसरी माता है ब्राह्मण की पत्नी, इसको ब्राह्मणी कहते हैं, वो भी वंदनीय होती है, माता समान होती है. चौथी माता है राज माता, राजा की जो पत्नी है वो भी प्रजा की माता होती है. पांचवी माता है गुरु माता, जिस व्यक्ति को हमने गुरु स्वीकार किया है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सन्यासी रहे. हमारे संप्रदाय में, हमारे संस्कृति में ऐसे कई गुरु हुए हैं, जैसे वशिष्ठ मुनि हुए हैं और जमदग्नि हुए हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो गृहस्थ थे और सांप्रत काल में कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं, जो गुरु हैं, जो गृहस्थ हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर। तो ऐसे गृहस्थ गुरु की माता को भी अपनी माता हम मानते हैं। और छठवीं बहुत महत्वपूर्ण माता, सब जीवों की माता, वो है भू माता, क्योंकि उसी के ही पृष्ठ पर हम अपना जीवन बिताते हैं। और सातवीं माता है परिचारिका, जिसको हम नर्स कहते हैं, जो अस्पताल में मरीजों की शुश्रूषा करते हैं, उसको भी माता माना गया है, क्योंकि वो माता की तरह ही सभी मरीजों की, बालक की तरह अपनी सेवा करती है। तो इन छः सात माताओं को जानना और उनके प्रति आदर व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। और उसके आगे भी बहुत सारी माताएं हैं, यहाँ तक कि हमें सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारी पत्नी भी हमारी माता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार पत्नी को माता क्यों कहा गया है, क्योंकि वो भोज्येषु माता कार्येषु मंत्री, यानी जो हमें अपने हाथों से प्रेम से भोजन बना के खिलाती है, इसलिए वो भी माता है। जब वो हमें प्रेम से भोजन बनाकर खिलाती है, तो माता का ही भूमिका अदा करती है, इसलिए वो भोज्येषु माता है। साथ साथ हमारी माता की जो बहन है, जिसको हम मौसी कहते हैं, वो सारी मौसियाँ भी हमारी माता हैं। मराठी में कहावत है, माए मरो मौशी जगो, यानी अगर माता भी मर जाती है किसी कारण से, तो मौसी को जीना चाहिए, क्योंकि मौसी भी माँ के बराबर ही होती है। साथ साथ हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि सभी बड़े भाइयों के पत्नियों को भी माता मानते हैं। जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अगर चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, या किसी भी दूर के रिश्ते के भाई हैं, अगर वो उम्र से बड़े हैं, तो उनकी पत्नी हमारी माता है, और उसी प्रकार से उनको उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। और एक चाणक्य मुनि का श्लोक है, जिसमें कहा गया है, परदारेषु मातृवत, पूरा श्लोक ऐसा है, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, परदारेषु मातृवत, आत्मवत सर्वमन्येषु यह पश्यति स पंडिता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परद्रव्य को, दूसरे के धन को कचरे के समान मानता है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी सारी स्त्रियां हैं उनको माता के समान देखता है, परदारेषु, दारा यानी स्त्री, परदारेषु मातृवत, मातृ के समान दिख, माता के समान देखता है, और सभी जीवों को जैसे वो स्वयं के लिए व्यवहार करता है, स्वयं के लिए सोचता है, वैसे ही सभी जीवों के बारे में सोचता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों के लिए आत्मवत, खुद के जैसे सोचता है, उसी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी पत्नी छोड़कर सभी स्त्रियां, चाहे वो छोटे उम्र की हो, बालिका अवस्था में हो, मध्यम अवस्था की हो, अविवाहिता हो, विवाहिता हो, या वृद्धावस्था हो, या परदेसी हो या देसी हो, परजाति की हो, सभी स्त्रियां जो हैं उन्हें हमें माता के रूप में देखना चाहिए। हम तो ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन हम सभी स्त्रियों की ओर माता इस भाव से देखते हैं या देखेंगे, वही हमारे लिए सही वास्तविक मातृदिन होगा। मदर्स डे वही होगा वास्तव में, जिस दिन हम सभी स्त्रियों को अपनी माता के रूप में देखेंगे। तो ये हुआ माताओं का वर्णन। और सबसे श्रेष्ठ माता, हमारे महाराष्ट्र में हमारे संत जो हैं वो अभंग गाते हैं, कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता। और हमारे महाराष्ट्र में हमारी जो सबसे बड़ा दैवत है पांडुरंग भगवान, उनको भी माऊली कहते हैं, और पांडुरंग के भक्तों को भी माऊली करके पुकारते हैं। तो ये भाव कितना श्रेष्ठ है। और भागवत में भी ये श्लोक है, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो ये सभी श्लोक अभंग हमें ये बताते हैं कि भगवान भी हमारी परम माता हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, सभी रिश्ते जो हैं सब भगवान हैं, उसमें से एक रिश्ता माता का भी भगवान को माना गया है, यानी कृष्ण भगवान विट्ठल भगवान हमारी माता है। इसके बाद में बहुत सारी महान माताओं का वर्णन शास्त्र में आता है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी जो माता है वो यशोदा है। वो मातृ रस, वात्सल्य रस जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वात्सल्य, वत्सलता, ये शब्द जो है वो गौ माता के संबंध में आया है। गौ माता अपने वत्स यानी अपने बछड़ा बछिया के साथ में जो व्यवहार करती है, जिस प्रकार का प्रेम व्यक्त करती है, उसे वत्सलता कहते हैं। और माता का जो अपने पुत्र के या पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है, वो भी वात्सल्य इस रूप से जाना जाता है। तो वात्सल्य ये शब्द की उत्पत्ति गाय से हुई है, गाय से संबंधित है। तो ये जो वात्सल्य है, वत्सलता है अपने संतान के प्रति, इसमें जो दिव्य रस वात्सल्य का है भगवान के प्रति, उसमें यशोदा माता सर्वश्रेष्ठ है। इनके प्रेम का, इनके वात्सल्य की कोई तुलना नहीं कर सकता है। उसके बाद में क्रमांक आता है रोहिणी माता का, जो बलराम जी की माता है, दो नंबर पे है। तीन नंबर पे जो ब्रज में बुजुर्ग माताएं थी, गोकुल में, नंदगांव में, जो यशोदा के साथ में रहा करती थी, उनकी उम्र की थी, उनके सारे ग्वाल बाल बच्चे थे, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना सुंदर था कि रोहिणी के बाद में उनका नंबर लगता है। उसके बाद में मथुरा में साक्षात अपने गर्भ से जिन्होंने जन्म दिया कृष्ण को, उनका नंबर आता है। उनका भी वात्सल्य इतना श्रेष्ठ है कि उन्होंने कृष्ण को जन्म देने के लिए कितना कष्ट सहन किया, अपने 6 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने, नवजात शिशुओं को शिला पर पटक कर सर्वनाश करने का दर्शन उन्होंने किया, केवल 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए। और श्री कृष्ण का दर्शन होते ही उन्होंने इतना मातृत्व का प्राकट्य किया है कि श्री कृष्ण भी मजबूर हो गए और 2 भुजाओं के बालक बन गए। उसके बाद में वात्सल्य में नंबर आता है कुंती देवी का। वो कृष्ण की बुआ है, लेकिन फिर भी उनका वात्सल्य कृष्ण के प्रति है। और देवकी और कुंती के वात्सल्य में भगवान भगवान है, इसकी भी अनुभूति है। और ब्रजवासी माताएं रोहिणी और यशोदा, इनके वात्सल्य के भाव में कृष्ण भगवान है, ये अनुभूति नहीं है। योग माया उनका ये ज्ञान छीन लेती है। उसके बाद में पार्वती माता भी जगन माता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के रूप में पार्वती देवी जब प्रकट होती है तो उसे भी जगन माता मानते हैं। सभी जीवों को वो सहारा देती है, अपने पुत्रों की तरह, पुत्रियों की तरह पालती है, उनकी रक्षा करती है। और जो लोग भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान की चरणों की प्राप्ति करने के लिए भी सहायता करती है, और बाकी सब जीवों को भी अपने पापों से मुक्त होने के लिए मदद करती है। और सर्वश्रेष्ठ हमारी माता, जो सभी माताओं का उगम है, वो है राधा रानी। वो श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। और ये जितने भी वर्णन हमने किए वो सभी राधा रानी के ही विस्तारित स्वरूप हैं। आगे हम देखते हैं द्रौपदी का वर्णन। द्रौपदी के प्रसंग में हम देखते हैं कि जब भी द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा रात के नींद में करता है, तो भीमसेन और अर्जुन कृष्ण के आदेश के अनुसार अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर आते हैं। उस समय स्वाभाविक तरीके से अगर देखा जाए तो हम उसका वध करने की आज्ञा देंगे। अगर हम उस द्रौपदी की जगह होते, माता के रूप में, जिसके 5 पुत्रों का शव सामने पड़ा हुआ है, अभी अभी कुछ समय पहले उनका वध किया गया है, बड़ी क्रूरता के साथ माता बिलक बिलक कर रो रही है, और उन पुत्रों का वध करने वाला खूनी व्यक्ति जब सामने लाया जाता है, तो अगर द्रौपदी ने कहा होता कि इसका वध करो तभी मेरा दिल शांत हो जाएगा, तो शास्त्र में कहीं भी उसका खंडन नहीं किया जाता। लेकिन द्रौपदी एक असामान्य माता थी, असामान्य भक्त थी भगवान की, असामान्य वैष्णवी थी, इसलिए द्रौपदी ने एक ऐतिहासिक संवाद वहां पर दिया है। क्योंकि वो एक स्वयं माता थी और माता के हृदय को पूर्णता जानती थी। माता के पुत्र के ना होने पर जो दुख हो रहा था उसको भी अनुभव कर रही थी। तो उसने भीमसेन जी और अर्जुन जी को और कृष्ण को कहा कि मुझे अश्वत्थामा को वध करने की आज्ञा नहीं देनी है, मैं चाहती हूँ कि अश्वत्थामा को आप जीवित छोड़ दो, क्योंकि मुझे 5 पुत्रों का मृत्यु होने के पश्चात जो दुख हो रहा है वो मैं गुरु माता कृपी को नहीं देना चाहती। क्योंकि अश्वत्थामा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और द्रोणाचार्य का विवाह कृपी से हुआ था, और कृपी ये गुरु माता थी। जैसे मैंने पहले भी कहा, गुरु माता भी 7 माताओं से एक होती है, तो अपनी गुरु माता को पुत्र विरह का दुख नहीं होना चाहिए। इस भावना से द्रौपदी ने वध करने के आदेश देने के बजाय उसको जीवित छोड़ने का आदेश दिया। तो ये है वात्सल्य। ये वात्सल्य की एक अलग प्रकार की अनुभूति है, अलग प्रकार का पहलू है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। फिर हमारे अभी के इतिहास में, तीन चार सौ साल के पहले के इतिहास में, हम जीजाबाई को इनका इतिहास पढ़ते हैं, जो शिवाजी महाराज की माता थी। शिवाजी महाराज को हमारे महाराष्ट्र में भगवान शंकर का अवतार भी मानते हैं। तो शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे, ये तो आदिल शाह के पास बीजापुर में सेवा करते थे, यानी वो महाराष्ट्र में नहीं थे, वो दक्षिण भारत में आदिल शाह के दरबार में सेवा करते थे एक बड़े अधिकारी की तरह। और जीजाबाई जब गर्भवती थी तभी भी उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, श्रीमद् भागवत को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, संतों का संग किया और अपने बालक को गर्भावस्था में ही बहुत सारे संस्कार दिए अपनी भावनाओं के माध्यम से। जब जन्म हुआ तब उसकी पूरी परवरिश जीजाबाई के नेतृत्व में हुई है, उनके देखरेख में हुई है। दादोजी कोंडदेव ने भी जो भी शिक्षा दी है वो जीजाबाई के नेतृत्व में, उनके अवलोकन में दी है। और जीजाबाई ने स्वतंत्र हिंदू राज्य का जो पूरी प्रेरणा है वो सारी शिवाजी के हृदय में बिंबित कर दी है। इसलिए जीजाबाई भी एक महान माता है जिसने शिवाजी जैसे महापुरुष को निर्माण किया अपने संस्कार से, अपने उदाहरण से, अपने शब्दों से, अपने प्रेरणा से। तो एक वो हमारे नज़दीक के इतिहास की एक धन्य माता है जिसका चरित्र और जिसका सेवा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे, वो कहानी वैसे वास्तव की कहानी नहीं है, एक अलंकारिक कहानी है, लेकिन हम उस अलंकारिक कहानी से माता के हृदय का जो स्थिति है, माता के हृदय की स्थिति है, उसका पूरा अंदाज हम लगा सकते हैं। वो कहानी इस तरह से है कि एक माता है और उसका एक पुत्र होता है। बचपन से बड़े ही प्रेम से उस माता ने अपने पुत्र का परवरिश किया होता है। बालक युवावस्था में आता है और स्वभावतः वो एक सुंदर युवती के प्रेम में आ जाता है, उनका प्रेम होता है और वो नित्य जभी जभी उसको मिलता था तो अपने माता का गौरव करता था, माता का प्रेम के विषय में बताता था, माता कितनी हमारी प्रेमी है, हम पर कितना वात्सल्य है उसका, उसका वर्णन करता था। तो माता का और उसका इतना घनिष्ठ प्रेमी संबंध देखकर उस कन्या के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि कहीं विवाह के पश्चात ये माता जो है वो हमारे संबंधों में कहीं दुष्टता न लाए या कहीं हमें कष्ट न दे या कि हमारे लिए बाधा न बन जाए। तो एक दिन उसने बहुत भावनावश कराकर उस पुत्र को, जो उसका होने वाला पति था, उसको कहा कि क्या तुम मेरे लिए सब कुछ भी कर सकते हो मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए। तो वो प्रेम के वश, मायावश पुत्र कह देता है अपनी होने वाली मंगेतर पत्नी को कि मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ के ले आ सकता हूँ। तो वो कहते चांद तोड़ने की जरूरत नहीं, मुझे जो इच्छा है वो ला के दे सकते हो क्या? वो कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एक प्रकार से क्रूर और दुष्ट जो लड़की थी वो कहती है कि तुम्हारे माता का हृदय जो है प्रेम भरा वो मुझे ला के दो। तो इस प्रश्न को, इस इच्छा को सुनकर वो स्तंभित हो गया, लेकिन वो उस कन्या के प्रेम में इतना वश हो गया था कि वो घर जाता है और अपनी माता का वध करता है और वध करके उसका शरीर चीर कर, उसका हृदय काट कर अपने हाथ में लेकर उस अपनी प्रेयसी को मिलने के लिए जाता है। और वो सब ये क्रिया करने से वो इतना क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं ना एक्साइटेड, वो इतना उत्सुक था इस बात में, इसमें इतनी धड़कन हृदय की हो रही थी, बहुत तेज गति से चल रहा था वो अपने प्रेयसी को मिलने के लिए। और जाते जाते जल्दी जल्दी हड़बड़ में वो पत्थर की ठोकर लग के वो गिर जाता है, उसके हाथ से वो जो हृदय है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। उस समय उस हृदय से आवाज़ आती है, बेटा तुझे लग तो नहीं गया, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो मराठी में कहते हैं आईचं काळीज, माता का हृदय वध करने के बाद भी पुत्र का हित ही सोच रही है। माता का भाव जो है वो इस तरह से असामान्य भाव है, उसे चाहे पुत्र की या पुत्रियों के द्वारा, संतान के द्वारा कितना भी कष्ट मिले, माता का प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। यहाँ तक कि इस पुत्र ने अपनी माता का वध किया और उसका हृदय लेकर वो अपनी प्रेयसी को भेंट देने के लिए जा रहा है, फिर भी उस हृदय से दर्द भरी आवाज निकलती है कि बेटा तुम्हें तो कहीं लग चोट तो नहीं आई। तो इस छोटी सी अलंकारिक कथा से हम माता का अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति कैसा निरपेक्ष प्रेम होता है, निरंतर प्रेम होता है, सतत प्रेम होता है, शाश्वत प्रेम होता है, इसकी अनुभूति होती है। अभी हम लोग कोरोना के लॉकडाउन में हैं, हाँ माता के विषय में देखेंगे तो कोरोना के लॉकडाउन होने के पहले भी माता कभी भी मुक्त नहीं थी, ऑफ ड्यूटी कहते हैं उसको, उसकी सेवाएं चल रही थी दिन रात के लिए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी भी माता 24 घंटा बिजी है, और अभी लॉकडाउन बंद हो जाएगा तभी भी माताएं बिजी रहेंगी अपने परिवार के और पुत्रों के और पुत्रियों की सेवा करने में। तो एक तरह से माताएं कभी भी छुट्टी पर नहीं होती है। माता होना एक सबसे बड़ा सौभाग्य है स्त्री के लिए, और माता होना ये सबसे बड़ा अलंकार भी है एक स्त्री के लिए, और इस अलंकार को वो इतनी सुंदर तरीके से निभाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी माता हो, चाहे वो अनपढ़ माता हो, अमीर घर की हो, गरीब घर की हो, सुंदर माता हो, कुरूप शरीर की माता हो, या अच्छे देश की हो, अच्छे जाति की हो, किसी भी प्रकार से आप माता का वर्णन करेंगे, माता की जाति केवल एक ही होती है, वो है माता, और माता का एक ही स्वभाव होता है वात्सल्य। तो और भी हमने बचपन से सुना है, शास्त्र में से सुना है कि हर एक स्त्री कुछ दिनों की पत्नी होती है और दीर्घकाल की माता होती है। हम सबको इसका अनुभव है कि स्त्री को जो भगवान ने निर्माण किया है वो प्राथमिक रूप से माता बनने के लिए निर्माण किया है, और माता बनने का मार्ग जो है वो पत्नी होने के मार्ग से जाता है, इसलिए पत्नी भी वो बनती है, पत्नी का कर्तव्य भी निभाती है, पति के लिए भी भोज्येषु माता बनती है, लेकिन उसका स्वभाव जो है, उसकी जो भावना है, उसका जो निर्माण भगवान ने किया है वो दीर्घकाल की माता है। इसलिए सभी पुरुषों को ये विचार करना चाहिए कि स्त्री का जो स्त्री सुलभ स्वभाव है, जो स्वाभाविक स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, वो माता होने का है, इसलिए उसके माता होने के स्वभाव को हर एक पुरुष को, हर एक पति को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने स्वभाव के अनुसार माता की तरह व्यवहार करती है तो वो पूर्णता पूर्णत्व को प्राप्त करती है। आगे जाकर हम देखते हैं कि माता एक ऐसा कोर्ट है, एक ऐसा न्यायालय है जिसमें सब गुनाह माफ हो जाते हैं। हमने पुत्र पुत्री होकर उनके इतने भी गुनाह किए होंगे, कितने भी अपराध किए होंगे, लेकिन माता वो सब अपने पेट में डाल देती है। मराठी में कहते थे पोटात घालून घेते, मतलब सब गुनाहों को, अपराधों को वो माफ कर देती है, और किसी भी अपराध और गुनाहों को करने से भी माता का अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति कभी भी प्रेम कम नहीं होता है। ऐसे कहा गया है कि नास्ति मातृसम छाया, नास्ति मातृसमम गति ही, नास्ति मातृसमम त्राणम, नास्ति मातृसमा प्रपा। इसका मतलब माता से श्रेष्ठ कोई आश्रय नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई सुरक्षा नहीं है, माता के जैसे कोई देने वाला नहीं है। माता को तो सदैव देने वाला फाउंटेन कहा गया है, एवर गिविंग फाउंटेन ऑफ लाइफ। हर समय माता केवल देती है, देती है, देती है, कभी भी कुछ मिलेगा उसके बदले में इसकी अपेक्षा नहीं करती है। एक माता ही ऐसी व्यक्ति है इस जीवन में जो सदैव अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को देती रहती है। और दुर्भाग्य से जब कलयुग की प्रगति हो रही है, आगे कलयुग बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि पुत्र पुत्रियों का माताओं के प्रति बहुत ही व्यवहार बदल चुका है। जब माता युवा अवस्था में होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो सब माताओं का, अपनी माता का संग प्राप्त करने के लिए झगड़ते हैं, मेरी माता, माय मदर, माय मदर, सब माता को अपना बनाना चाहते हैं, और माता का पूरा ध्यान मेरे ऊपर हो, माता का पूरा प्रेम मुझे ही मिले, इसकी प्रतियोगिता बचपन में चलती रहती है कि माता को मैं प्राप्त करूं, माता को मैं प्राप्त करूं। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो जब बालक बालक होते हैं और माता युवा अवस्था में होती है, सब लोग मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता कहते हैं। फिर सब बालक युवा अवस्था में होते हैं, उनका विवाह होता है, उनकी बहुएं आती हैं घर पे, फिर माता वृद्ध हो जाती है, फिर जब माता की देखभाल करने का समय आता है तो फिर सारे पुत्र कहते हैं तेरी माता, तेरी माता, तेरी माता, योर मदर, योर मदर, योर मदर, क्योंकि तभी माता की सेवा करने की जिम्मेदारी देने का प्रश्न है। तो सब लोग वो जिम्मेदारी स्वार्थ के वश दूसरे पर ढकेलने का प्रयास करते हैं, चाहे बड़ा भाई हो तो छोटे भाई पर ढकेलने का प्रयास करते हैं, और छोटा भाई हो तो बड़े भाई पर ढकेलने का प्रयास करते हैं। यह आजकल का दुर्भाग्य है, और इसके अंजाम के रूप में वो माता और वो पिता अभी वृद्धाश्रम में दिखाई पड़ते हैं। उनको अपने निजी वैयक्तिक कौटुंबिक आनंद में उनकी बाधा न हो, ये क्रूर विचार से उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। पुत्र और बहुएं जीवित होने पर भी माता पिता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखपूर्ण जीवन वृद्धाश्रम में बिताते हैं। ये वृद्धाश्रम की संस्कृति जो है वो पश्चिम जगत से आई है, हमारे देश में वृद्धाश्रम की संकल्पनाएं नहीं थी, लेकिन जब आधुनिकता और स्वार्थ बढ़ गया कलयुग में तो फिर ये वृद्धाश्रम की संकल्पना आगे आई। केवल पैसे देकर अपनी जो सिर दर्द है इस तरह सोचकर उसको मिटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वैदिक संस्कृति में कहीं भी वृद्धाश्रम का नियोजन नहीं है। वृद्धाश्रम अपना ही घर होता है। जिस माता ने हमको 9 महीने पेट में पालन किया, इतना कष्ट सहा, अभी वो गर्भवती माँ का कष्ट का वर्णन यहाँ करने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं कि कोई भी गर्भवती स्त्री पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक कितना शारीरिक कष्ट सहती है। उस कष्ट में भी घर का काम संभालती है, और उसके बाद में दुग्धपान स्तनपान कराना है तो भी कितना कष्ट सहन करती है, उसके पश्चात उसको संस्कार देती है, उसके ऊपर अच्छे विचारों का प्रभाव डालती है, उसका चरित्र बनाती है, और पूरे जीवन भर बालक का कल्याण के बारे में चिंतन करती है। दिन रात जगती है, जब बालक बीमार पड़ता है तो अपनी नींद को त्याग करके न्यौछावर करती है बालक के नींद के लिए, ताकि वो सो जाए और खुद जगती रहती है। क्या क्या नहीं करती है माता, जब बालक सोता है तो मच्छरों से, बिच्छू से, सांप से, संकट से बालक को बचाती है। ये बालक को पता भी नहीं चलता है कि माता ने क्या क्या किया है। कभी माता अपने बालक को रिपोर्ट नहीं करती है, बेटा कल रात को तो सांप आया था, कल रात को तो मच्छर से तुमको मैंने बचाया। ऐसे अनंत सेवाएं बालक के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए माताएं करती रहती है, कभी उसका लिस्ट बनाकर रिपोर्ट नहीं करती है, कभी उसकी तनख्वाह नहीं मांगती है, कभी उसका बदले में कुछ चीज़ नहीं चाहती है। लेकिन इतनी सेवा निरपेक्ष भावना से 24 घंटे सालों बाद, सालों बाद, सालों तक जो माता करती है, तो पुत्र का या पुत्रियों का कर्तव्य है कि वृद्धावस्था में जब उनका शरीर जरा जर्जर हो जाता है तब उनकी देखभाल बड़े ही प्रेम से करना चाहिए। जब बाल्यपन में बालक पूछता है अपनी माता को भोजन खिलाते समय कि माता ये कौन है, तो माता कहती है ये पंछी है बेटा, फिर एक ग्रास मुंह में डालती है, खाता है, फिर बालक उसी पक्षी को देखकर वही प्रश्न पूछता है माता ये क्या है, तो माता कहती है बेटा ये पक्षी है। इस तरह से बालक 50 बार वही प्रश्न पूछता है भोजन करते समय, तो माता हर एक बार अधिक प्रेम से बिल्कुल त्रस्त न होकर बताती है बेटा ये तो पंछी है। और इतनी बार पूछने के बाद भी वो त्रस्त नहीं होती है, और प्रेम से उसको उसका उत्तर देती है। और ऐसे दिन में हजारों सवाल बालक जो है छोटे अवस्था में माता को करता है। माता एक कण के लिए भी त्रस्त न होकर बिल्कुल उत्साह से उसके हर एक छोटे मोटे निरर्थक प्रश्नों का भी उत्तर देते रहती है। और जब वो माता बुढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है, तो अपने पुत्रों को कभी कभी एक एक प्रश्न बार बार पूछते हैं कि बेटा ये गोली कौन सी है, तो बेटा कहता है ये डायबिटीज की गोली है। फिर कुछ देर के बाद में भूल याददाश्त खोने की वजह से माता फिर पूछती है बेटा ये गोली कौन सी है, बेटा कहता है मैया बोला ना डायबिटीज की गोली है। फिर वो कुछ देर बाद भूल जाती है, फिर पूछती है बेटा ये गोली कौन सी है, तो पुत्र कहता है माता कितनी बार बताना आपको, एक बार समझता नहीं क्या, आपको एक बार लिख के रखो ना, बार बार यही पूछते रहते हो। वही माता ने 50 बार, 100 बार, हजारों बार तुम्हारे उसी प्रश्न का अनंत बार बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया था, लेकिन हम एक दो बार पूछने से ही पुत्र त्रस्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं कृतज्ञता। हमें माताओं के हमारे ऊपर जो ऋण है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो माताओं के ऋण को समझता है वही प्रेम से माता की देखभाल कर सकता है। अगर हम स्वार्थ को ही सोचते हैं, अपने ही निजी पारिवारिक सुख के बारे में सोचते हैं, अपने ही निजी पुत्रों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और माताओं को अगर हम क्या कहते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, दुर्लक्ष कर देते हैं उनके ऊपर, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान की दृष्टि से माताओं को पिताओं को दुर्लक्ष करना, उनके वृद्धावस्था में उनको प्रेम नहीं देना, उनको बड़े तिरस्कृत करना, उनके उनके साथ में क्रूरता से बात करना, दुष्टता से बात करना, प्रेम से बात नहीं करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए अगर हमको भगवान के सामने बड़े ही सीना तान कर विश्वास के साथ खड़ा रहना है, तो हम सब लोगों को वृद्धावस्था में हमारे माताओं की पिताओं की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर अगर 10 भाई है, अगर 3 भाई है, अगर 7 भाई है, तो हर एक पुत्र को ये सोचकर माता की देखभाल करना है कि मैं ही अकेला उसका पुत्र हूं। उसमें प्रतियोगिता होनी चाहिए कि मेरी माता मेरे साथ रहे, मैं उनकी देखभाल करूंगा। आजकल का जमाना बिल्कुल विपरीत हो गया है। वो एक सिरदर्द के रूप में माता पिताओं को देखते हैं जब वृद्ध हो जाते हैं, कब मेरे घर से निकल जाएं और कब किसी और के भैया के घर में उसको उनको डाला जाए और कब मेरा सिरदर्द समाप्त हो जाए। कितना कष्ट है ये सोचते हैं, कितना सिरदर्द है इनको संभालना, कितना मुश्किल है। इस तरह से एक माता जिन्होंने हमको गोद में रखा था, उसकी गोद जैसी पूरे विश्व में कोई पाठशाला नहीं थी उस समय, उसी के गोद में सबसे बड़े संस्कार और सबसे बड़े ज्ञान को हमने प्राप्त किया था। ऐसी माता के गोद में हम पले और पाल पोस कर बड़े हुए हैं, और जब उनकी अवस्था असहाय हो जाती है, शरीर से वृद्ध हो जाते हैं, तो एक सिरदर्द के रूप में हम उनको देखते हैं। तो मातृ दिन में, मदर्स डे में सबको व्हाट्सएप मैसेज भेजना, सबको फोन करना और सबको ये फोटोग्राफ भेजना, उसमें बड़े बड़ी बातों को भेजना, बड़े बड़े डायलॉग को भेजना, कविताओं को भेजना आसान है, लेकिन ये सब बहुत ही सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर ऊपर का है सब, इसमें अंदर कोई जान नहीं, सब खोखली चीजें हैं सब। अगर हम वास्तव में मातृदिन को मनाना चाहते हैं, तो मातृदिन के अवसर पर माताओं के जो हमारे ऊपर अनंत ऋण है उसके बारे में चिंतन करने का यह दिन है, उनके बारे में विचार करने का यह दिन है, और वो चिंतन ऋण के बारे में चिंतन करके उनकी सेवा करने का नए सिरे से संकल्प करने का यह दिन है। शास्त्र में लिखा है कि माता का और पिता का, उसमें से भी माता का सर्वाधिक कहा गया है कि ऋण हम कोई भी सेवा करके कभी भी चुका नहीं सकते हैं। उनके जीवन खत्म होने के पश्चात उनका जीवन भर भी श्राद्ध तर्पण करते रहेंगे, तो भी माता पिताओं का ऋण जो है कभी भी कोई व्यक्ति चुका सकता है, ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। शास्त्र में आदेश दिया गया है, क्योंकि माता ने जो जन्म देने के समय और जन्म देने के बाद हमें अच्छी तरह से परवरिश देने के लिए जो भी कष्ट किया है, उसका मुकाबला हम किसी भी चीज को देने से नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी ये सोच नहीं सकते हैं कि हम ये करने से माता के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी कोई भी विधि नहीं है। अगर हमने अपना तन मन धन पूरे जीवन तक लगा दिया माता की सेवा में, तो भी हम ये सोच नहीं सकते हैं, हमको वो अधिकार नहीं है ये सोचने का कि हम माता के ऋण से मुक्त हो गए या मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सदैव माता के ऋण में ही रहना है, यही वास्तविक स्थिति है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कभी भी माता के ऋण से कोई भी सेवा करके मुक्त नहीं हो सकता हूँ, वही व्यक्ति भगवान के नजरों में ऊपर उठ जाता है और भगवान की कृपा को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। मैं मेरी अभी माता का उदाहरण बताता हूँ। हमारे घर में 5 भाई 2 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरा जन्म होने के पश्चात, मेरे डिलीवरी के पश्चात मेरी माता को अस्थमा हो गया। उसके पहले अस्थमा यानी दमे की बीमारी नहीं थी, पता नहीं क्या योगायोग था उससे अस्थमा की बीमारी हो गई, और आज तक उसे अस्थमा की बीमारी है। अभी 57 साल हो गए, अभी थोड़ी कम है, लेकिन जब मेरी माता 40 साल की थी तब मेरे बाद में उसे बहुत दमे का कष्ट हुआ। हर पूर्णिमा अमावस्या को उसको बेहद दम लगता था और इस बीमारी से वो त्रस्त हो जाती थी। लेकिन मेरे बचपन को, बचपन की घटनाओं की आंखों देखी स्मृति मेरे हृदय में, मन में अभी भी है कि इतने लोगों का वो भोजन बनाती थी, माता खुद और पिताजी और दादी जी और 5 बच्चे, और मैं जन्मा हुआ तो मेरी बहन शादी हो गई, तो एक बहन छोटी घर में थी, यानी 6 हम भाई, भाई बहन 5 और 2, 7 में से 1 की शादी हुई, तो मतलब 6 बच्चे और 3 स्वयं और पिताजी और दादी जी। इतने लोगों का भोजन वो उस अवस्था में भी बनाती थी, इतना उसको दम लेकर कष्ट पाते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है। कभी-कभी इतना दम लगता था कि दिन रात भर वो दम लगने से जगती थी, दवाई लेने के पश्चात भी दम उसका कम नहीं होता था, सांस रुकना कम नहीं होता था। फिर भी मुझे एक भी दिन याद नहीं है कि मेरी माता ने घर में भोजन नहीं बनाया और बच्चों को भूखा रखा। चावल की गंजी कभी-कभी बनाती थी केवल, लेकिन वो अचार के साथ में बालकों को, पिताजी को पेट भर के खिलाती थी। बीच-बीच में दम लगने के समय विश्राम करती थी, फिर रसोई में जाकर चावल को देखती थी, फिर उसको छानती थी, और फिर लोगों को परोसती भी थी, फिर 2 मिनट सोती थी, फिर उठ के आती थी। ऐसे कष्टमय अवस्था में हम सब पुत्रों की और बहनों की सेवा करते हुए मैंने उनको देखा है। और भी बहुत सारा बता सकता हूँ, लेकिन तात्पर्य कहने का यह है कि अपने पुत्रों का हित और कल्याण, इसके अलावा माता और कुछ नहीं सोच सकती है। वो पुत्रों ने और पुत्रियों ने उसके प्रति कितना भी अपराध किया होगा, कभी भी माता उसको नोट नहीं करती है, उसको हृदय में समा के रखती नहीं, उसको सहन करती रहती है, लेकिन उसकी वात्सल्य की धारा उसके मन से कभी भी कम नहीं होती है। अभी हम बुजुर्ग हो गए हैं और हमारी भी पत्नी है, और वो भी हमें भी बालक हैं, और हम भी अपनी पत्नियों को देखते हैं कि उनके मन में अपने पुत्रों के, पुत्रियों के पत्नी कितना वात्सल्य है, कितना भी कष्ट और दुख उनके प्रति, उनके तरफ से प्राप्त होने के पश्चात कैसे माता और पिताओं का प्रेम अपने संतान के प्रति कभी भी कम नहीं होता है। और सबसे बड़ी माता का गुण है सहनशीलता, कि वो अपने संतान के तरफ से किया हुआ, हो गया हुआ अपराध कभी स्वीकार ही नहीं करती है, इतना सहन करती है कि उसकी वात्सल्य की धारा एक भी कण से कम नहीं होती है। तो इन सब विचारों का, चिंतन करने का आज दिन है। अपने मन में पता नहीं होगा या पता होगा कितना माता ने हम पर प्रेम किया है, कितना हम पर वर्षाव किया है वात्सल्य का। इस इतिहास की याद करने का आज का दिन है, और उसके प्रति वो चिंतन करने के पश्चात उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसका भी चिंतन करने का दिन है, और कहीं हम उस कर्तव्य को करने में चूक तो नहीं रहे हैं, इसके बारे में विचार करने का दिन है। कोई हमारे हाथ से गलती हो गई होगी तो उसको सुधारने का भी दिन है आज का। अगर हम अपनी सेवा करने में अगर त्रुटि कर रहे हैं, कुछ हमारे सेवा में दोष है, कुछ कम पड़ रहे हैं हम, तो उसको भी सुधारने का, उसके बारे में विचार करने का आज का दिन है। तो आइए केवल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, इस तरह से इसको ना मनाएं, इसको चिंतनशील रूप से मनाएं, विचार पूर्वक मनाएं, ताकि हम जब जीवन का हमारा अंत होगा तो भगवान के सामने हम खड़े हो सकते हैं, और दोषी भाव से नहीं, लेकिन आनंदी भाव से, कि हमने अपने कर्तव्य को पूरा करने का पूरे दिल से प्रयास किया है। ये विश्वास जब हम भगवान को दिलाएंगे, और भगवान को इसका विश्वास होगा कि हमने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ अपने माता का और पिता की सेवा करने का पूर्ण प्रयास किया है, तो भगवान की पूरी कृपा हमें प्राप्त होगी। सबसे पहले गुरु और देवता शास्त्र में भी माता को माना गया है, मातृदेवो भव पहले, उसके पश्चात पितृदेवो भव, उसके पश्चात गुरुर्देवो भव। सबसे पहले गुरु भौतिक जीवन में संस्कार के लिए, आध्यात्मिक जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए ही माता ही है। जो जो श्रद्धा माता हमको दिलाती है, वही हमारे जीवन की पूंजी होती है, हमारे जीवन की नींव होती है। जो जो संस्कार हमें माता देती है, वही हमारे जीवन के संस्कार की पूंजी और नींव है। उसके ऊपर हमारा व्यक्तित्व बनता है, उसी के ऊपर हमारी हमारे जीवन की यश या अपयश सिद्ध हो जाता है। तो माता जो है वो चरित्र चरित्र बनाने वाली स्त्री है, वो अपने पुत्रों का और पुत्रियों का चरित्र बनाती है। इसलिए इस विश्व में सबसे अधिक माताओं की देखभाल होनी चाहिए। अभी यूएन ने भी वो एक इनिशिएटिव शुरू किया है, ग्लोबल पेरेंटल इनिशिएटिव, क्योंकि विश्व में सभी माताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, पिताओं के द्वारा उन पर मारपीट की जाती है, गर्भावस्था में भी की जाती है। ये बहुत विश्व के लिए हानिकारक है, क्योंकि माताओं को गर्भावस्था में और स्तनपान की अवस्था में सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक देखभाल, सबसे अधिक खुशहाली देना बहुत आवश्यक है। और जितनी स्वस्थ माताएं रहेंगी गर्भावस्था में, स्तनपान की अवस्था में और बच्चों की परवरिश की अवस्था में, उतने उतना अच्छा चरित्र और उतना अच्छा संस्कार वो अपने संतान को दे सकती है। मैंने साइकोलॉजी में एक डिप्लोमा किया था, उसमें हमारे लिए एक पूरा किताब था इमोशंस के विषय में, चेंज के विषय में। तो उसमें एक पूरा 20 मार्क का प्रश्न आता था कि देश का स्वास्थ्य ये माता को स्वस्थ रखने के ऊपर आधारित है। द हेल्थ ऑफ अ नेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलफेयर ऑफ द मदर्स एक्सप्लेन, 20 मार्क्स। तो कम से कम 15 पन्ने का निबंध ऐसे वहां लिखना पड़ता था कि किस तरह से जब स्वस्थ माताएं, सुखी माताएं होती है तो वो देश को बहुत मजबूत बनाती है। क्योंकि स्वस्थ और सुखी माताएं, प्रसन्न माताएं, जिनके लिए अच्छी देखभाल पतियों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा की गई है, ऐसी स्वस्थ प्रसन्न और सुखी माताएं देश के लिए सुपुत्र देते हैं, चरित्र संपन्न पुरुष को देते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में, महापुरुष बनने में और देश का हित करने में सहायता कर सकते हैं। तो पुरुष का भी जन्म माता के ही गोद से होता है, स्त्री के ही गोद से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरुष से भी अधिक स्त्री है, क्यों? क्योंकि उसके ही कोख से सारे महापुरुष, सारे संत, सारे महाजन जो है वो उनका जन्म होता है। इसलिए हमारे संस्कृति में जब हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसमें भी राधा को अधिक महत्व देते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी को अधिक महत्व देते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो पार्वती को अधिक महत्व देते हैं। जब जब किसी जोड़ी देवताओं का हम पूजा करते हैं तो उसमें स्त्री देवता जो है उसको प्रधानता देते हैं, क्योंकि स्त्री ही हमारे जीवन का मूल है, जो माता के रूप में हर संतान को पोषण देती है। इसलिए आइए, हमारे ऊपर जो ऋण है, जो भी आयु और जो भी आरोग्य, जो भी मनस्थिति, जो भी चेतना, जो भी संस्कार, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उसकी मूल दाता हमारी माता है। तो उस माता के ऋण का चिंतन करें, विचार करें, ऋण को व्यक्त करें। और हम हमारे संस्था में हमारे बालकों को हमेशा कहते हैं, सबसे पहले उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करना चाहिए और माता का आशीर्वाद देना चाहिए, लेना चाहिए। सबसे पहला हमारे संस्कार, हमारे लिए संस्कार ये है, हमारे लिए जो उत्कृष्ट है ये कि हमें सबसे पहले उठकर हमारी माताओं का चरण छूना चाहिए। माता तो वात्सल्य का भंडार है ही, लेकिन जैसे ही बालक चरण की ओर बढ़ता है, माता के हृदय से वर्षा होता है शुभेच्छाओं का, आशीर्वादों का, वरदानों का। मैंने मेरी माताओं के विषय में इसका अनुभव किया है। मेरी 90, 52, 92 वर्ष की माता को जब मैं सुबह उठकर मेरे घर में होते हुए पहले प्रणाम करता हूँ तो दोनों हाथ से मुझे वो इतना दुलारती, इतना प्रेम करती है और इतना आशीर्वाद देती है। उसे कुछ भी याद नहीं आता है, उसकी स्मृति खो चुकी है पूरी तरह से। लेकिन जब भी पुत्र के रूप में मैं उनके चरण छूता हूँ, दिन में 3 बार, तो मेरे ऊपर वो आशीर्वाद का वर्षाव करती है। वो मेरे लिए भी बहुत ही पोषक है, एनरिचिंग है, समृद्ध करने वाली घटना है वो मेरे जीवन में। तो मैं सभी पुत्र और पुत्रियों को विनती करता हूँ, अगर आपके घर में आपकी माता है तो आप बड़े सौभाग्यपूर्ण हैं। अगर आपके घर में वो रहते हैं आपकी सेवा लेने के लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अलंकार है ये कि वो हमारे घर में निवास कर रही हैं। ये हमारा सौभाग्यपूर्ण काल है जीवन का। तो आइए, मैं सबको विनंती करता हूँ, सब बालकों को विनंती करता हूँ, सब मध्यवयीन युवकों को विनंती करता हूँ, सब विवाहित पुरुषों को विनंती करता हूँ, कन्याओं को विनंती करता हूँ, हर सवेरे उठकर माता के चरण छूना, आशीर्वाद की याचना करना। और वो चरण छूने का तरीका, वो आजकल का मॉडर्न तरीका मैं अपनाना, एक हाथ से घुटने तक आधा, दोनों हाथ, हाथ की वस्तुओं को नीचे रख के दोनों हाथ से माताओं के चरण छूना। और उससे भी अच्छा, माताओं माता के दोनों चरणों में अपना सिर लगाना, हाथ के साथ पूर्णतः से उनको अभिवादन और प्रणाम करना। तब आप पूर्ण आशीर्वाद के हकदार बनते हो। वो एक हाथ से, बाएं हाथ से आधा घुटने तक, आधा झुककर किया हुआ आशीर्वाद, जो जो वंदन है, वो केवल एक रिचुअल है, एक केवल कर्मकांड की तरह है। करना है इसलिए, इच्छा नहीं है, ऐसा इसका प्रमाण है। वो दोनों हाथ से चरणों को स्पर्श करते हुए, माता के चरणों पर अपने सर को स्पर्श करते हुए हमें आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, हृदय से वंदन करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, तब हमारा जीवन धन्य है। तो आज के इस मातृदिन में, अंग्रेजी क्यों ना हो, अंग्रेजी मातृदिन में आप सबको, जिन जिन को माताएं हैं इस जीवन में और जिन जिन की माताएं जीवित हैं, वो सबको मेरा शुभेच्छा है, अभिनंदन है, और ये शुभकामना भी है कि आप सब लोग अपने माताओं की सेवा में कभी नहीं चुकेंगे और कभी नहीं हटेंगे और कभी दोषपूर्ण सेवा नहीं करेंगे, कभी आलस्य नहीं करेंगे, कभी सिरदर्द के रूप में नहीं देखेंगे, अपना भाग्य, अपना सौभाग्य और अपना अलंकार के रूप में माताओं की सेवा को देखेंगे। इसी विचारों के साथ मैं आप सबको हृदय से मातृदिन की शुभेच्छा देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।